अध्ययन लेख 52। इस लेख का अध्ययन 22 से 28 फरवरी के दौरान किया जाएगा। विषय निराशा, इस संघर्ष में आप जीत सकते हैं। ये लेख भजन 55 के 22 पर आधारित है, जहां लिखा है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। गीत 33, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। लेख की एक झलक, हम सब कभी कभी निराश हो जाते हैं। इस लेख से हम जानेंगे कि जब हम निराश होते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि यहोवा की मदद से हम इस संघर्ष में जीत सकते हैं। पैराग्राफ 1, सवाल, जब हम निराश होते हैं तो क्या होता है? हर दिन हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं और हम उनका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जब हम निराश होते हैं तो समस्याओं का सामना करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। निराशा की भावना हमें अंदर से कमजोर कर सकती है। ये हमारी हिम्मत तोड़ सकती है और हमारी खुशी छीन सकती है। नीतिवचन 24 के 10 में लिखा है, मुश्किल घड़ी में अगर तू निराश हो जाए तो तुझ में बहुत कम ताकत रह जाएगी। ये बात कितनी सच है। निराश होने से हम हिम्मत हार जाएंगे और जिंदगी की समस्याओं का ठीक से सामना नहीं कर पाएंगे। पैराग्राफ 2, सवाल क, हम किन वजहों से निराश हो जाते हैं? सवाल ख, इस लेख में हम क्या जानेंगे? हम कई वजहों से निराश हो जाते हैं। हम अपनी कमजोरियों या गलतियों की वजह से या खराब सेहत की वजह से निराश हो जाते हैं। अगर हमें यहोवा की सेवा में मनचाहा काम या जिम्मेदारी ना मिले या हमारे प्रचार के इलाके में ज्यादातर लोग ना सुने, तब भी हम निराश हो सकते हैं। इस लेख से हम जानेंगे कि निराशा पर काबू पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम में कोई कमजोरी हो, पैराग्राफ 3, सवाल, क्या याद रखने से हम खुद को बेकार नहीं समझेंगे? हम सब कई बार गलतियां करते हैं और हमारे अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, इसलिए हम शायद सोचें कि हम बहुत बुरे इंसान हैं और यहोवा हमें नई दुनिया में जिंदगी नहीं देगा। लेकिन इस तरह सोचना सही नहीं है। तो हमें क्या बात याद रखनी चाहिए ताकि हम खुद को बहुत बुरा इंसान ना समझें? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को छोड़ सब इंसानों ने पाप किया है, रोमियो 3:23। यहोवा हमें खामियां नहीं ढूंढता रहता, ना ही वो मांग करता है कि हम कभी कोई गलती ना करें। वो हमारा पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है। वो देखता है कि हम अपनी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम खुद को बेकार ना समझें। वो इस संघर्ष में हमारी मदद करना चाहता है। पैराग्राफ 4, सवाल, पहला योहन्ना 3:19-20 में बताई किस बात से दो बहनों को हिम्मत मिली? दिया और मंजू के उदाहरणों पर गौर कीजिए। जब दिया छोटी थी तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था और उसे नीचा दिखाया गया था। कभी कोई उसकी तारीफ नहीं करता था, इसलिए बड़ी होकर वो खुद को बेकार समझने लगी। जब उससे कोई छोटी सी गलती हो जाती तब भी वो सोचती थी कि वो किसी काम की नहीं है। मंजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत नीचा दिखाया था, इसलिए वो खुद को बहुत ही गिरा हुआ महसूस करती थी। सच्चाई में आने के बाद भी उसे लगता था कि वो यहोवा की एक साक्षी कहलाने के लायक नहीं है। फिर भी दिया और मंजू ने यहोवा की सेवा करना नहीं छोड़ा। उन्हें कैसे हिम्मत मिली? उन्होंने गिड़गिड़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और अपने मन का सारा बोझ उस पर डाल दिया। वो समझ पाए कि यहोवा जानता है कि उन पर क्या क्या बीती है और वो खुद को कितना बेकार समझते हैं। भले ही उन्हें अपने अंदर कुछ अच्छा ना दिखे, मगर यहोवा देख सकता है कि उनमें कुछ अच्छाइयां हैं। पहला योहन्ना 3:19-20 में लिखा है, इस तरह हम जान लेंगे कि हम सच्चाई की तरफ हैं और अपने दिलों को यकीन दिलाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। चाहे हमारा दिल हमें किसी भी बात में दोषी ठहराए, हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे दिलों से बड़ा है और सब कुछ जानता है। पैराग्राफ 5 से संबंधित तस्वीर के बारे में, एक बहन कुछ वक्त के लिए निराश हो जाती है। वो याद करती है कि उसने बीते वक्त में कितनी सेवा की थी। वो यहोवा से प्रार्थना भी करती है फिर उसे यकीन हो जाता है कि उसने पहले जो सेवा की थी और आज वो जो कर रही है उसे यहोवा नहीं भूलेगा। चित्र शीर्षक, हमने पहले जो भले काम किए थे और आज जो कर रहे हैं वो सब यहोवा जानता है। पैराग्राफ 6। सवाल, अगर कोई बार बार कोशिश करने पर भी वही गलती दोहराता है तो उसे कैसा लग सकता है? अगर एक व्यक्ति बहुत संघर्ष करने के बाद अपनी बुरी आदत छोड़ देता है मगर बाद में दोबारा वही गलती करता है तो वो बहुत निराश हो सकता है। पाप करने पर दोषी महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए कि हम ये मान बैठें कि हम किसी काम के नहीं हैं और यहोवा हमें कभी माफ नहीं कर सकता। हम जो सोचते हैं वो गलत है और इस तरह सोचने से हम हिम्मत हार बैठेंगे और यहोवा की सेवा करना छोड़ देंगे। याद कीजिए कि हमने नीतिवचन 24 के 10 में क्या पढ़ा था। अगर हम निराश हो जाएंगे तो हमारे अंदर समस्याओं का सामना करने की ताकत नहीं बचेगी। तो जब हमसे कोई पाप हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहोवा से प्रार्थना करके उससे माफी मांगनी चाहिए और इस तरह यहोवा से बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। यशाया 1:18। यहोवा देखता है कि आपको अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है और आप खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो आपको माफ कर देगा। यहोवा से प्रार्थना करने के अलावा प्राचीनों को भी अपनी गलती बताइए। वो आपकी मदद करेंगे ताकि यहोवा के साथ आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। पैराग्राफ 7। सवाल, अगर हम अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमें क्यों निराश नहीं होना चाहिए? जो लोग अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, ऐसे लोगों से फ्रांस का एक प्राचीन शॉन लूक कहता है, क्या यहोवा हमसे उम्मीद करता है कि हम कभी कोई गलती ना करें तभी वो हमें नेक समझेगा? जी नहीं, यहोवा बस ये देखता है कि गलती होने पर क्या हम अफसोस करते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करें तो वो हमें नेक समझेगा। अगर आप किसी कमजोरी पर काबू पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो खुद को कोसते मत रहिए। हम में से कोई भी परमेश्वर की नजर में अपने आप नेक नहीं बन सकता। परमेश्वर ने फिरौती का इंतजाम करके हम पर जो महाकृपा की है उसकी वजह से वो हमें नेक समझता है। पैराग्राफ 8। सवाल, निराश होने पर हम और किससे मदद मांग सकते हैं? हम अपने मसीही भाई बहनों से भी मदद मांग सकते हैं। अगर कभी हमारा मन बोझ से दबा हो तो हम अपने भाई बहनों के सामने अपना मन हल्का कर सकते हैं। जब वो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे और हमारी हिम्मत बंधाने के लिए कुछ कहेंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे। नाइजीरिया की एक बहन जॉय, जो बहुत निराश और दुखी रहती थी, अब कहती है, भाई बहनों की मदद से ही मैं अपना दुख सह पाई हूं। अगर वो ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुनी और भाई बहनों के जरिए मेरी हिम्मत बंधाई। उनसे मैंने ये भी सीखा कि मैं कैसे निराश लोगों की हिम्मत बंधा सकती हूं। लेकिन हमारे भाई बहन हर वक्त ये नहीं भाव सकते कि हम दुखी हैं और हमें हौसले की जरूरत है। हमें खुद किसी प्रौढ़ भाई या बहन को बताना होगा कि हम कैसा महसूस करते हैं ताकि वो हमारी हिम्मत बंधाएं। अगर हम बीमार हो जाएं। पैराग्राफ 9। सवाल, भजन 41 के 3 और 94 के 19 में क्या लिखा है जिससे हमें दिलासा मिलता है? यहोवा से मदद मांगिए। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम बड़ी आसानी से निराश हो सकते हैं और अगर हम काफी समय से बीमार हैं तो हम और भी दुखी हो सकते हैं। ऐसे में हमें यहोवा से मदद मांगनी चाहिए। ये सच है कि आज यहोवा कोई चमत्कार करके हमारी बीमारी दूर नहीं कर देगा, मगर वो हमें दिलासा दे सकता है और सहने की ताकत दे सकता है। भजन 41 के 3 में लिखा है, जब वो बिस्तर पर बीमार पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभालेगा, बीमारी के दिनों में परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। भजन 94 के 19 में लिखा है, जब चिंताएं मुझ पर हावी हो गईं तब तूने मुझे दिलासा दिया, सुकून दिया। वो हमारे भाई बहनों को उभार सकता है कि वो हमारे लिए कुछ खरीदारी करें या घर पर किसी काम में हमारी मदद करें। भाई बहन शायद हमारे पास आकर हमारे लिए प्रार्थना भी करें। यहोवा हमें बाइबल में लिखी ऐसी बातें याद दिला सकता है जिससे हमें दिलासा मिले, जैसे ये कि आने वाली नई दुनिया में हमें कितनी अच्छी जिंदगी मिलेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। पैराग्राफ 10। समझाइए कि एसांग हमेशा निराश क्यों नहीं रहा। नाइजीरिया में रहने वाले एसांग के साथ एक दुर्घटना हुई जिस वजह से वो पैरों से लाचार हो गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो फिर कभी चल नहीं पाएगा। एसांग कहता है, मैं बुरी तरह निराश हो गया, मुझे गहरा सदमा लगा। मगर क्या वो हमेशा निराश ही रहा? जी नहीं, वो बताता है कि वो खुद को कैसे संभाल पाया। मैंने और मेरी पत्नी ने प्रार्थना करना और बाइबल का अध्ययन करना कभी नहीं छोड़ा। हमने ठान लिया था कि हम अपनी तकलीफों के बारे में हमेशा नहीं सोचेंगे, बल्कि हमें जो आशीषें मिली हैं उनके बारे में सोचेंगे, जैसे ये कि परमेश्वर की नई दुनिया में हमें कितनी अच्छी जिंदगी मिलेगी। पैराग्राफ 11। सवाल, जब सिंडी बहुत बीमार थी तब भी उसे गहरी संतुष्टि क्यों मिली? मेक्सिको की रहने वाली सिंडी को पता चला कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। वो ये दुख कैसे सह पाई? जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने एक लक्ष्य रखा कि वो हर दिन किसी न किसी को गवाही देगी। उसने बताया, दूसरों को गवाही देने की वजह से मैं ऑपरेशन से अपना ध्यान हटा पाई। मैं हमेशा अपने दर्द के बारे में नहीं सोचती रही, बल्कि दूसरों पर ध्यान देने लगी। डॉक्टरों और नर्सों को गवाही देने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया। उनसे बातचीत करते वक्त पहले मैं उनका और उनके घर के लोगों का हालचाल पूछती थी। फिर मैं उनसे पूछती थी कि उन्होंने डॉक्टर या नर्स बनने का फैसला क्यों किया, जबकि ये इतना मुश्किल काम होता है। इस तरह के सवाल करने से मैं जान पाती थी कि उन्हें किन विषयों में दिलचस्पी है। कई डॉक्टरों और नर्सों ने कहा कि कभी कोई मरीज उनसे नहीं पूछता कि आप कैसे हो। उनमें से कई लोगों ने मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उनके बारे में सोचा। कुछ ने तो मुझे अपना पता और फोन नंबर भी दिया। बीमारी के उन दिनों में मैं जानती थी कि ये तकलीफ सहने में यहोवा जरूर मेरी मदद करेगा, मगर मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे इतनी संतुष्टि भी देगा। पैराग्राफ 12 और 13। सवाल का, कुछ बीमार और बुजुर्ग भाई बहन किस तरह प्रचार करते हैं? सवाल ख, उन्हें क्या नतीजा मिलता है? जो भाई बहन बहुत बीमार रहते हैं या चल फिर नहीं सकते, वो इस बात को लेकर निराश हो जाते हैं कि वो बहुत कम प्रचार कर पाते हैं। मगर इस तरह के कई भाई बहन अच्छी तरह गवाही देते हैं। अमेरिका में लॉरल नाम की एक बहन को 37 साल तक सांस लेने के लिए एक मशीन के अंदर बंद रहना पड़ा। इसके अलावा उसे कैंसर हो गया, उस पर कई बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए और उसकी त्वचा में कुछ बीमारियां हो गईं। मगर इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के बावजूद उसने दूसरों को गवाही देना नहीं छोड़ा। जब अस्पताल से नर्स और दूसरे कर्मचारी उसके घर आते थे तो वो उन्हें गवाही देती थी। उसने यहोवा के साक्षी बनने में कम से कम 17 लोगों की मदद की। फ्रांस का रहने वाला एक प्राचीन रिचर्ड बताता है कि जो भाई बहन अपने घर से या वृद्धाश्रम से कहीं जा नहीं सकते, वो क्या कर सकते हैं। वो कहता है, वो हमारी कुछ किताबें पत्रिकाएं एक टेबल पर लगा सकते हैं, तब उसे देखकर लोग जानना चाहेंगे कि ये प्रकाशन किस बारे में है और भाई बहन गवाही दे पाएंगे। इस तरह हमारे ये प्यारे भाई बहन निराश नहीं होंगे जो पहले की तरह घर घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे भाई बहन खत लिखकर और टेलीफोन से भी गवाही दे सकते हैं। पैराग्राफ 14 से 16 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, जो भाई बहन चल फिर नहीं पाते वो भी किसी न किसी तरह प्रचार कर सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। अगर हमारे पास मनचाहा काम या जिम्मेदारी ना हो। पैराग्राफ 14। सवाल, राजा दावेद के उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? हम शायद यहोवा की सेवा में कोई काम या जिम्मेदारी चाहते हों, मगर वो किसी वजह से हमें ना दी गई हो। हो सकता है हम बहुत बूढ़े हो गए हों, या हमारी सेहत ठीक ना रहती हो, या कोई और कारण हो। ऐसे में हम बहुत निराश हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम दावेद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दावेद का बहुत मन था कि वो यहोवा के लिए एक मंदिर बनाए, मगर यहोवा ने इस काम के लिए किसी और को चुना। जब ये बात दावेद को बताई गई तो वो निराश नहीं हुआ। इसके बजाय यहोवा ने जिसे इस काम के लिए चुना था उसकी उसने बहुत मदद की। दावेद ने मंदिर बनाने के लिए बहुत सारा सोना और चांदी दान किया। दावेद के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैराग्राफ 15। सवाल, भाई ओयग ने निराश होने पर क्या किया? फ्रांस का रहने वाला एक भाई ओयग बहुत बीमार हो गया था, इसलिए उसने प्राचीन के नाते सेवा करना छोड़ दिया। वो इतना बीमार हो गया था कि वो घर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाता था। उसने कहा, मैं खुद को बेकार समझने लगा और बहुत निराश हो गया था, मगर कुछ समय बाद मैं समझ गया कि मुझे ये सोचकर दुखी नहीं रहना चाहिए कि अब मैं पहले की तरह सेवा नहीं कर पा रहा हूं। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मैं यहोवा की सेवा में जो थोड़ा बहुत कर पा रहा था उससे मुझे खुशी मिलने लगी। मैंने सोच लिया है कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं गिदोन और उसके 300 आदमियों को याद रखता हूं। वो सब थके हुए थे फिर भी डटे रहे। मैं भी डटे रहना चाहता हूं। पैराग्राफ 16। सवाल, स्वर्गदूतों से हम क्या सीखते हैं? वफादार स्वर्गदूतों ने भी हमारे लिए एक अच्छी मिसाल रखी। राजा अहाब के दिनों में यहोवा ने स्वर्गदूतों से सुझाव मांगा था कि दुष्ट राजा अहाब को मूर्ख बनाने के लिए क्या करना सही होगा। तब स्वर्गदूतों ने तरह तरह के सुझाव दिए, मगर परमेश्वर ने उनमें से एक स्वर्गदूत से कहा कि उसकी बताई तरकीब काम कर जाएगी। तब क्या बाकी स्वर्गदूत ये सोचकर निराश हो गए कि हमने बेकार में सुझाव दिया और अपना समय बर्बाद किया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। स्वर्गदूत सच में नम्र हैं और चाहते हैं कि सिर्फ यहोवा की महिमा हो। पैराग्राफ 17। सवाल, अगर हमारे पास मनचाहा काम या जिम्मेदारी ना रहे तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि यहोवा का एक साक्षी होना और उसके राज के बारे में प्रचार करना हमारी सबसे बड़ी आशीष है। आज यहोवा की सेवा में हम जो काम करते हैं या जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो शायद कल हमारे पास ना हो, मगर यहोवा ये देखकर हमें अनमोल नहीं समझता कि हम क्या काम करते हैं या क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर हम नम्र रहेंगे तो ही यहोवा और हमारे भाई बहन हमें अनमोल समझेंगे और हमसे प्यार करेंगे। इसलिए यहोवा से विनती कीजिए कि हमेशा नम्र रहने में वो आपकी मदद करे। बाइबल में यहोवा के नम्र सेवकों के बारे में जो लिखा है उसके बारे में मनन कीजिए और आपसे जितना हो सके खुशी खुशी अपने भाई बहनों की सेवा कीजिए। अगर लोग संदेश ना सुने। पैराग्राफ 18 और 19। सवाल, अगर ज्यादातर लोग आपका संदेश ना सुने तो खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आपके प्रचार के इलाके में ज्यादातर लोग नहीं सुनते या घर पर नहीं मिलते? क्या इस वजह से आप कभी कभी निराश हो जाते हैं? आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका जोश बना रहे और आप ये काम खुशी से करते रहें? प्रचार में खुशी कैसे पाएं? नाम के बक्स में कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा हमें प्रचार काम के बारे में सही सोच रखनी चाहिए। आइए जानें कि इसमें क्या क्या शामिल है। हमें याद रखना है कि प्रचार करने की सबसे खास वजह है लोगों को परमेश्वर के नाम और उसके राज के बारे में बताना। यीशु ने साफ बताया था कि बहुत कम लोग जीवन की राह पर चलने का फैसला करेंगे। हमें ये भी याद रखना है कि जब हम प्रचार में होते हैं तो हम यहोवा, यीशु और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष है। फिर चाहे लोग हमारा संदेश सुने या ना सुने, यहोवा ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो योग्य हैं। इसलिए आज भले ही एक इंसान हमारा संदेश ना सुने, मगर हो सकता है वो अगली बार सुने। कुछ और जानकारी। प्रचार में खुशी कैसे पाएं? एक, ऐसे वक्त पर घर घर का प्रचार कीजिए जब लोग घर पर होते हैं। दो, ऐसी जगह जाइए जहां लोग होते हैं, जैसे बाजार, पार्क, बस अड्डे वगैरह। तीन, अलग अलग तरीकों से गवाही दीजिए, जैसे खत लिखकर, सड़क पर या सरेआम गवाही देकर। चार, लोगों से अच्छी तरह बातचीत करना सीखिए। पांच, हमारी वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन प्रकाशनों का इस्तेमाल करना सीखिए। छह, कुछ पत्रिकाएं और ब्रोशर किसी एक समूह के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। अपने इलाके में ऐसे लोगों को ढूंढिए और उन्हें ये प्रकाशन दीजिए। 7, ऐसे इलाके में जाइए जहां सुनने वाले बहुत हैं या जहां बहुत कम प्रचार हुआ है। जरूरत पड़े तो दूसरी भाषा सीखिए। वापस लेख पर। पैराग्राफ 20। सवाल, जैसे यिर्मयाह 20 के 8 और 9 में लिखा है, अगर हम प्रचार के इलाके को लेकर निराश हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम भविष्यवक्ता यिर्मयाह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसे एक ऐसा इलाका दिया गया था जहां यहोवा का संदेश सुनाना बहुत मुश्किल था। दिन भर लोग उसकी बेइज्जती करते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। यिर्मयाह 20 के 8 और 9 में लिखा है, जब भी मैं तेरा संदेश सुनाता हूं तो मुझे जोर जोर से यही ऐलान करना पड़ता है, मार काट और तबाही मचेगी। यहोवा का संदेश सुनाने की वजह से दिन भर मेरी बेइज्जती की जाती है, मेरी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए मैंने कहा, अब से मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, उसके नाम से और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर का संदेश मेरे मन में आग की तरह जलने लगा। ये मेरी हड्डियों में धधकती आग जैसा था। मैं उसे रोकते रोकते थक गया, मुझसे और रहा नहीं गया। एक बार यिर्मयाह इतना निराश हो गया था कि उसने सोचा कि वो प्रचार करना छोड़ देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहोवा का संदेश उसके अंदर आग की तरह जलने लगा और वो खुद को रोक नहीं पाया। अगर हम रोज बाइबल पढ़ें और उस पर मनन करें तो यहोवा का संदेश यानी उसका वचन हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर करेगा। तब यिर्मयाह की तरह हम भी प्रचार करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम ये काम खुशी से करते रहेंगे और ये भी हो सकता है कि हमें सुनने वाले लोग मिल जाएं। पैराग्राफ 21। सवाल, निराश होने पर हम क्या कर सकते हैं ताकि इस संघर्ष में हम जीत सकें? दिया, जिसके बारे में हमने पहले बात की, कहती है कि जब हम निराश होते हैं तो शैतान इस मौके का फायदा उठाकर हमें यहोवा से दूर ले जाना चाहता है। ये उसकी एक बहुत बड़ी चाल है, मगर हमें याद रखना है कि शैतान की हर चाल को यहोवा नाकाम कर सकता है। तो चाहे आप किसी भी वजह से निराश हों, यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती कीजिए। अगर आपकी कुछ कमजोरियां हैं तो उन पर काबू पाने में वो आपकी मदद करेगा। अगर आप बीमार हैं तो वो आपको संभालेगा। अगर आपको यहोवा की सेवा में मनचाहा काम या जिम्मेदारी नहीं मिली है तो भी वो आपको खुश रहना सिखाएगा। और प्रचार में चाहे ज्यादातर लोग ना सुने, फिर भी अपना जोश बनाए रखने में वो आपकी मदद करेगा। जब भी आप निराश होते हैं तो अपने पिता यहोवा को अपने दिल की बात साफ साफ बताइए, वो आपको मजबूत करेगा। फिर आप हमेशा निराश नहीं रहेंगे, इस संघर्ष में आप जीत जाएंगे। निराश होने पर आगे बताई आयतों से हमें कैसे हिम्मत मिल सकती है? पहला यूहन्ना 3 का 19 और 20। भजन 41 का 3। यिर्मयाह 20 का 8 और 9। गीत 41। मेरी प्रार्थना सुन। लेख समाप्त।